पृष्ठ संख्या 73। हम सभी मिलकर एक विधान बनाएंगे, किंतु एक हफ्ते के प्रयास के बाद गांधी ने कमेटी के सामने अपनी विफलता स्वीकार की और कहा कि पूरा हफ्ता गंवाने के बावजूद सांप्रदायिक समस्या का हम अभी तक कोई हल नहीं निकाल सके हैं। उन्होंने कहा, विभिन्न तरह के लोग भारतीय प्रतिनिधि मंडल में आ गए हैं जिन्हें अपने संगठनों और जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है। हम लोग कांग्रेस द्वारा चुनकर भेजे गए हैं, शेष किसी के चुने प्रतिनिधि नहीं हैं। वे लोग ही इस समस्या पर बातचीत से कोई निश्चित फॉर्मूला निकालने में अवरोधक हैं। मैं कांग्रेस का प्रतिनिधि हूँ जो संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करती है। इस संस्था के माध्यम से जो करोड़ों दलित अछूत गूंगे हैं, जो अपने हक की बात नहीं कर सकते, ऐसे सभी पिछड़े गरीब अछूतों का कांग्रेस प्रतिनिधित्व करती है। हमारे बारे में भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है कि हम अछूतों को किसी तरह का प्रतिनिधित्व देने के विरोधी हैं। यह गलत है। हम उन्हें विशेष प्रतिनिधित्व देने के पक्ष में नहीं हैं। हम पूर्ण बालिग मताधिकार के पक्ष में हैं। इस तरह करोड़ों अछूत अपने प्रतिनिधित्व को पूरा कर लेंगे। विशेष प्रतिनिधित्व से उन्हें लाभ के बजाय हानि ज्यादा होगी। मताधिकार से अछूत अछूत नहीं रह जाएंगे। कानून के मुकाबले हमारे धार्मिक संस्कार ज्यादा मजबूत हैं, जिससे अछूतों की यह गति हुई है और इस तरह के संस्कारों के लिए प्रत्येक समझदार हिंदू अपने को शर्मनाक महसूस करता है। मैं किसी भी कठोर कानून को बनाने का पक्षधर हूँ जिससे अछूत भाइयों को सवर्णों के जुर्म से मुक्ति मिल सके। ईश्वर को धन्यवाद दी जा रही है, बहुत शीघ्र ही छुआछूत का पाप हमारे समाज में भूतकाल की बात हो जाएगी। इस पर अंबेडकर ने कहा, कल रात की बैठक में निश्चय था कि केवल बैठक के अनिश्चित काल तक स्थगन की घोषणा होगी, कोई किसी पर टिप्पणी नहीं करेगा। लेकिन गांधी ने इस निश्चय को तोड़ा है, इसीलिए मैं भी मौन तोड़ता हूँ। उन्होंने कहा, हम लोग चुने हुए नहीं अपितु सरकार के मनोनीत सदस्य हैं। यदि दलित वर्ग को इस सम्मेलन के लिए अपने प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता, तो वे मुझे ही अपना प्रतिनिधि चुनते। मुझे चुने जाने की औपचारिकता भले ही न हुई हो, लेकिन मैं अपने पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हूँ। जहाँ तक कांग्रेस के अछूतों के प्रतिनिधित्व करने का सवाल है, वे तो उन्हें अपना अधिकार भी नहीं देना चाहते। कुमायूं गढ़वाल के अछूतों ने एक प्रस्ताव भेजा है कि वे कांग्रेस में अपना पूरा अविश्वास प्रकट करते हैं। कमेटी की विफलता पर ब्रिटिश सरकार को ही अछूतों के प्रतिनिधित्व की समस्या हल कर देनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत का अछूत वर्ग सत्ता हथियाने के लिए उतावला नहीं है। हमने कभी प्रस्ताव पास करके सत्ता हस्तांतरण के लिए ब्रिटिश सरकार को हटाने की मांग नहीं की है। हम अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं और उनका तत्काल हल चाहते हैं। जो वर्ग सत्ता पाने को उतावले हैं, यदि उन्हें आप सत्ता हस्तांतरित करते हैं, तो इस बात की पूरी गारंटी दीजिए कि परंपरावादी दकियानूसी वर्गों के आधिपत्य से हमारे अधिकार मुक्त हों। इस पर गांधी जी उत्तेजित हो गए। उन्होंने बीच में ही टोकते हुए कहा कि तथा कथित अछूतों की सेवा में एक शब्द और कहना चाहता हूँ। मैं सभी वर्गों का दावा समझ सकता हूँ, लेकिन अछूतों की ओर से मेरे प्रति निष्ठुरतापूर्ण व्यवहार किया गया है। इसके मायने हैं, एक व्यक्ति के रूप में मुझ में जितनी भी शक्ति है पूरी शक्ति से इसका विरोध करूंगा। पूरी दुनिया जान ले मैं अछूत प्रथा को खत्म करना चाहता हूँ। सिख और मुसलमान का सदा सर्वदा अलग अस्तित्व बना रहेगा। पृष्ठ संख्या 74। क्या ऐसा ही अछूतों का भी सदा सर्वदा के लिए अलग अस्तित्व बना रहे? यदि छुआछूत रहा तो हिंदुत्व मर जाएगा। अंबेडकर के प्रति पूरा आदर दर्शाते हुए कहता हूँ, उनका निर्णय गलत है। मैं अछूतों के अधिकार के लिए संपूर्ण पृथ्वी के अधिकार को दाव पर ब्रैकेट में वारगेन ब्रैकेट क्लोज नहीं लगाऊंगा। यह अंबेडकर के लिए उचित नहीं है कि वे सभी अछूतों के प्रतिनिधि बनकर बोले। मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, यदि अछूत ईसाई अथवा मुसलमान बन जाएं, तो वह स्थिति भी मुझे खास स्थिति में ही कबूल हो सकती है। लेकिन गांव की हिंदू बस्ती में वे सदा सर्वदा के लिए अछूत बनकर बैठे रहें, यह दशा मुझे स्वीकार्य नहीं। जो लोग केवल राजनैतिक अधिकारों की बात करते हैं, वे नहीं जानते भारतीय समाज कैसे बना है। गोलमेज सम्मेलन में दोनों की लगातार झड़पें होती रहीं, क्योंकि अछूत समस्या पर दोनों के दृष्टिकोण मेल नहीं खाते थे। अंततः सम्मेलन से गांधी 1935 के अधिनियम और मानवीय अधिकार तथा एक सीमित मतदान पद्धति पर सीमित सरकार लेकर वापस आए। दलित मोर्चे पर उनकी हार हुई। ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर के पक्ष को स्वीकार किया। अंबेडकर के शब्दों में, गांधी सम्मेलन में व्यक्तित्व रूप में कोई छाप नहीं छोड़ सके, न तो अपने को एक योग्य राजनीतिज्ञ ही सिद्ध कर सके। बहुसंख्यक हिंदू स्वीकार नहीं करेंगे। वे जिस भूमिका को अदा करने गए थे उसके योग्य नहीं थे। कोई भी देश संविधान तैयार करने वाली किसी बैठक में अपना ऐसा प्रतिनिधि नहीं भेजेगा जो अध्ययन और प्रशिक्षण के हिसाब से उस बैठक के लिए सर्वथा अयोग्य हो। गांधी गोलमेज सम्मेलन में गुजराती के एक कवि नरसी मेहता का एक भजन कंठस्थ करके गए थे। इससे अच्छा होता वे अपने साथ दुनिया के संविधानों का एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने वाली कोई पुस्तक लेकर गए हों। विषय के संपूर्ण ज्ञान के अभाव में वे उस विषय का प्रतिपादन कर रहे थे। वे ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की काट तथा विकल्प प्रस्तुत करने में विफल थे। गांधी विफल मनोरथ और अपमानकारक वापसी किए हैं, फिर भी 28 दिसंबर 31 को बंबई में उनकी वापसी पर देश भर के कांग्रेसियों ने इकट्ठा होकर गर्म जोशी के साथ उनका स्वागत किया है। कांग्रेसियों ने जीत के गीत गाए हैं। अखबारों के अनुसार उनका ऐतिहासिक स्वागत हुआ है, किंतु अछूतों ने उनके आगमन पर उनका विरोध किया। उन्हें काले झंडे दिखाए, दोनों तरफ से झड़पें हुई। उन्होंने गांधी जी को चार्ज सीट दी। ज्ञापन के मुख्य मुद्दे थे, एक, कांग्रेस के कार्यक्रमों में रचनात्मक ढंग से अछूतों के लिए कई बातें हैं लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ। दो, गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के लिए अंबेडकर की अलग से सीटें सुरक्षित करने की मांग का विरोध किया। तीन, वे कांग्रेस की ओर से मुसलमानों और सिखों को अलग प्रतिनिधित्व देने के पक्ष में थे लेकिन अछूतों के हक में नहीं थे। चार, यह बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए नाटक हो रहा है कि गांधी अछूतों के इस देश के अकेले सबसे बड़े नेता हैं। अंबेडकर ने कहा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के महाड़ के तालाब के पानी के लिए और मंदिर में प्रवेश के लिए जब अछूतों ने आंदोलन किया, तो गांधी ने उनकी निंदा की। एक, अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेज वॉल्यूम 5, कॉमा पृष्ठ संख्या 307। पृष्ठ संख्या 75। अछूतों को सत्याग्रह की कोई जरूरत नहीं, उन्होंने छुआछूत नहीं पैदा किया है। सवर्ण हिंदुओं ने अस्पृश्यता पैदा की है, इसीलिए सवर्ण हिंदू ही प्रायश्चित करें और सत्याग्रह करें। अंबेडकर सवाल करते हैं कि यदि पाप करने वाले को ही सत्याग्रह करने का अधिकार है और छुआछूत के लिए पापी सवर्ण हिंदू हैं, तो उन्हें ही सत्याग्रह करना चाहिए। तो क्या यह बात राजनीति के लिए यह तर्क लागू नहीं हो सकती? फिर भारत की जनता अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह क्यों करे? क्यों नहीं अंग्रेज करें? क्योंकि गुलाम बनाने का पाप तो उन्होंने किया है। अंबेडकर के अनुसार गांधी ने बैकम के अछूतों के सत्याग्रह का समर्थन किया था, क्योंकि इस सत्याग्रह को कांग्रेस ने चलाया था। वे नासिक के आंदोलन के विरोधी थे, क्योंकि यह आंदोलन कांग्रेस से अलग हटकर स्वतंत्र ढंग से चलाया गया था। उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में कहा कि नामित करने से दलितों में नेतृत्व नहीं उभरेगा, आबादी के अनुपात में सीटें सुरक्षित कर इन्हें पृथक मताधिकार ही देकर यशस्वी बनाया जा सकता है। हमने यह मांग 1919 में चेम्स फोर्ड के सामने की थी। 1923 में ब्रिटिश मंत्री, जो भारतीय मामले देखते थे, इस समस्या के समाधान के लिए कमेटी गठित की। उसने धारा सभाओं में दलितों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की। इसके आधार पर हमारी संख्या को बढ़ाया गया। गोलमेज सम्मेलन की माइनॉरिटी कमेटी ने हमारे हक को मान लिया था, लेकिन गांधी नाराज हो गए। गांधी जी की नाराजगी एक कारण से थी कि वे अपने विरोधियों की संतुष्टि लायक कोई तर्क नहीं दे सके थे। वे अपने विरोध का तर्क संगत कारण नहीं बता सके। वे हमारी मांगों के प्रति विशेष अरुचि रखते थे। गोलमेज सम्मेलन से वापस आने पर डॉक्टर अंबेडकर की यह टिप्पणी थी। उपर्युक्त टिप्पणी यह दर्शाने के लिए काफी है कि सुदूर देश में भारतीय मामलों को लेकर भारत के दो महान नेताओं के संबंध कितने कटु हो गए थे। आजाद भारत की राजनीति को जिन दो महान नेताओं के विचारों ने सबसे अधिक प्रभावित किया, वे अंग्रेज नेताओं की उपस्थिति में किस तरह आपस में लड़े, यह ऊपर के विवरण से स्पष्ट है। अब यह तो इतिहास के विद्यार्थी के लिए अलग से शोध का विषय है कि यदि दोनों में से किसी एक के विचार को मान लिया जाता, तो उसका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। आजाद भारत में दलितों की स्थिति से स्पष्ट है कि वयस्क बालिग मताधिकार ने इनकी दशा को सुधारने में सबसे बड़ा योगदान किया है। संयुक्त मतदान की पद्धति से न केवल इन वर्गों को समाज में महत्वपूर्ण पद मिले, सामाजिक प्रतिष्ठा मिली, अपितु बृहत्तर भारतीय समाज के अभिन्न समादृत अंग रूप में वे आज प्रतिष्ठित हैं। क्या इसी तरह की संपृक्त प्रतिष्ठा प्रथम निर्वाचन के कार्य से इन्हें प्राप्त होती? हाँ, धारा सभाओं और सरकारी पदों पर आरक्षण के हिसाब से इन वर्गों को पद तो प्राप्त हो जाता, उससे इन्हें आर्थिक समृद्धि भी प्राप्त होती, लेकिन क्या बृहत्तर भारतीय समाज के अभिन्न अंग रूप में इन वर्गों का अस्तित्व रहता, अथवा भारतीय समाज के पृथक इकाई रूप में इनकी पहचान होती? यह अपने अपने तर्कों के आधार पर निष्कर्ष निकालने की बात है, लेकिन इतना जरूर है कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक दौर में ही इन दोनों नेताओं के मधुर संबंध किसी तरह बने होते तो शायद स्वतंत्रता संग्राम का वर्ग चरित्र दूसरा ही होता, और जैसा कि गोलमेज सम्मेलन में जाने से पूर्व गांधी की चिंता थी कि यदि अंदर से विभक्त भारतीय समाज के हाथ में आज़ादी आ भी गई तो उसका अर्थ प्रभावकारी नहीं होगा, उनका मानना था कि स्वतंत्रता संग्राम का अंतर्निहित भाव भारतीय समाज की समरसता और एकता है। पृष्ठ संख्या 76। इसी भाव के कारण उनकी मान्यता थी कि पृथक निर्वाचन के अधिकार का विचार उतना ग्रहणीय नहीं है। इन दोनों का संघर्ष आगे भी जारी रहा, जिससे आज़ादी के संग्राम का लक्ष्य बाधित हुआ। गोलमेज सम्मेलन से वापस आने के बाद गांधी जी ने पुनः अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने की घोषणा की। गांधी जी 4 जनवरी 1932 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल में भेजे गए। प्रधानमंत्री चर्चिल ने कठोर नियम लागू कर दिया था। कांग्रेस नेताओं की संपत्ति कुर्क होने लगी। बच्चों के आंदोलन करने पर अभिभावक जेल जाने लगे। दमन चक्र तेज था। कांग्रेस की गतिविधियां प्रतिबंधित कर दी गईं। 1 मार्च 1932 को गांधी जी ने यरवदा जेल से सर सैमुअल होरे को पत्र लिखा, जिसने ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन की चर्चा की गई थी और संभावित पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा के संबंध में चेतावनी दी गई थी। वे इस बात के इंतजार में थे कि कम्युनल अवार्ड घोषित हो जाए तब पत्र लिखे, लेकिन उन्होंने पूर्व चेतावनी देते हुए कहा, आपको याद होगा गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति के समय जब अल्पसंख्यक करार प्रस्तुत किया जा रहा था तो मैंने कहा था दलित वर्गों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिए जाने पर मैं अपने जान की भी बाजी लगाकर रोकूंगा। यह केवल सगल के लिए अथवा वक्त की नज़ाकत को देखते हुए नहीं कहा गया था, यह एक गंभीर वक्तव्य था। उस वक्तव्य के अनुसरण में मैंने भारत में वापस आकर पृथक निर्वाचन के खिलाफ जनमत बनाने का प्रयास किया, पर ऐसा नहीं कर पाया। मुझे पत्रों से जानकारी मिल रही है कि आपकी सरकार कभी भी कम्युनल अवार्ड घोषित कर सकती है। पहले मैं सोचता था इस पंचाट की घोषणा के बाद ही इसके खिलाफ जो संभव है वह करूं, किंतु ब्रिटिश हुकूमत को पूर्व जानकारी दिए बिना ऐसा करना मेरे लिए उचित नहीं है। मुझे पृथक निर्वाचन के खिलाफ अपनी पुरानी बातों को दोहराना नहीं है। मैं दलितों को विधान मंडलों में प्रतिनिधित्व देने का विरोधी नहीं हूँ। मैं उनके प्रत्येक वयस्क को मताधिकार देने का प्रबल पक्षधर हूँ। बिना किसी संपत्ति या योग्यता के दूसरे वर्गों का मताधिकार भले ही सीमित हो, लेकिन दलित वर्गों का मताधिकार वयस्क हो, किंतु पृथक मताधिकार उनके और हिंदुत्व के हित में नहीं है, चाहे राजनैतिक दृष्टि से इसका जो भी अर्थ हो। जब हम हानि की कल्पना करते हैं तो वे सवर्ण हिंदुओं द्वारा किसी तरह विघटित हैं और वे उन पर किस तरह निर्भर हैं इसे जान लेना जरूरी है। जहाँ तक हिंदुत्व का सवाल है, पृथक निर्वाचन इसे न केवल बांटेगा अपितु विघटित भी करेगा। मेरे लिए इन वर्गों का प्रश्न नैतिक और धार्मिक है। राजनैतिक प्रश्न महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन नैतिक और धार्मिक दृष्टि के मुकाबले में वह कमजोर है। मैं बचपन से ही इन वर्गों की तरक्की में रुचि रखता हूँ तथा अनेक बार इनकी तरक्की के लिए बहुत कुछ प्रयास किया है। ऐसा करने में मुझे कोई घमंड नहीं हो रहा है कि हिंदुओं की कोई कुर्बानी उन्होंने अनंत काल से इन दलितों पर जो अन्याय किया है उसकी भरपाई नहीं कर सकती। किंतु साथ साथ यह भी कह दूं कि उनके अपमान का बदला पृथक निर्वाचन से नहीं चुकता किया जा सकता। इसीलिए यदि आपकी सरकार ने उनके लिए पृथक निर्वाचन की बात स्वीकार की तो मैं आमरण अनशन प्रारंभ कर दूंगा। कुछ लोग मेरे इस फैसले को जल्दबाजी में लिया गया अत्यंत अनुचित व राजनीतिक विद्वेष से उठाया कदम कहेंगे, किंतु यह कोई दाव पेच नहीं अपितु मेरी अंतरात्मा की पुकार है। एक, महात्मा तेंदुलकर, वॉल्यूम 3, कॉमा पृष्ठ संख्या 159। पृष्ठ संख्या 77। चाहे पवित्रता की जो भी धारणा मेरे बारे में हो, लेकिन मैं अपने अंतर्मन की आवाज को दबा नहीं सकता। उन्होंने अंत में कहा कि मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी सभी आशंकाएं कि ब्रिटिश सरकार पृथक निर्वाचन का अधिकार देने जा रही है गलत सिद्ध हो। इसके जवाब में होरे ने 13 अप्रैल 1932 को जवाब लिखा, अंतिम फैसला होने तक गांधी के विचारों को संज्ञान में लिया जाएगा। हम लोग कोई निर्णय तर्क और न्याय की तुला पर तौलने के बाद ही लेंगे। लॉर्ड लोथीमन कमेटी ने अपना दौरा समाप्त कर अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है, तब तक के लिए आप इंतजार करिए। 17 अगस्त 1932 को रामसे मैकडोनाल्ड ने अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व, जिसे कम्युनल प्रतिनिधित्व के नाम से जाना जाता है, की वैकल्पिक योजना की घोषणा कर दी। काउंसिल के सदस्यों की संख्या दूनी कर दी गई। अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन की पद्धति स्वीकार की गई। बंगाल पंजाब में मुसलमानों को उनके पूर्ण बहुमत के बावजूद वहां सीटें आरक्षित कर दी गईं। पंजाब में सिख और हिंदुओं को आरक्षण दिया गया। दलित जातियों को अल्पसंख्यक घोषित कर उन्हें भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। दलितों के लिए अलग से सीटें सुरक्षित कर उन्हें अनारक्षित सीटों से भी चुनाव लड़ने के अधिकार दिए गए। साथ ही कहा गया कि 20 वर्षों के बाद आरक्षित सीटें समाप्त कर दी जाएंगी। इस घोषणा से गांधी की आशंका सही सिद्ध हुई। उन्होंने 18 अगस्त को पुनः मैकडोनाल्ड को पत्र लिखा। मेरे 11 मार्च के पत्र को सैमुअल होरे ने आप लोगों को अवश्य दिखाया होगा। 13 नवंबर 1931 को सेंट जेम्स पैलेस लंदन, जहां गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, और 11 मार्च 32 को मैंने कहा था कि पृथक निर्वाचन की बात की मैं अपने जान की बाजी लगाकर भी रोकूंगा। मैं आमरण अनशन की घोषणा करता हूँ। किसी तरह का अन्न नहीं खाऊंगा, केवल सोडा या नमक युक्त पानी लूंगा। मेरी मांग है कि दलित वर्गों को सम्मिलित मताधिकार और सामान्य मतदाताओं द्वारा चुने जाने चाहिए। जब तक यह योजना परिवर्तित नहीं होगी, मेरा अनशन जारी रहेगा। 20 सितंबर दोपहर से अनशन शुरू होगा। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री ने इस पत्र का उत्तर भेजते हुए कहा, आपने अतिवादी दृष्टिकोण अपनाया है। आपकी इच्छा दलितों को संयुक्त मताधिकार देने की नहीं है, क्योंकि यह तो योजना में दिया गया है। न तो आप हिंदुओं की एकता में विश्वास रखते हैं, क्योंकि इसका भी योजना में प्रावधान है। आप केवल अनंत काल से दबे कुचले दलितों को उनके अधिकार से रोकना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वे अपने बल पर अपने चंद चुने विधायकों के द्वारा अपनी बात को ना उठा सके, जिससे भविष्य में उनकी अग्रिम भूमिका हो सके। आप उसे रोकना चाहते हैं। चूंकि आप लोग कोई समझौते पर नहीं पहुंच सके, इसीलिए इन वर्गों के हित में सरकार ने यह निर्णय लिया है। यह किसी तरह नहीं बदलेगा। सरकार अपने किए पर आरूढ़ है, और यह तभी बदल सकता है जब उन वर्गों के लोग किसी अन्य चुनावी पद्धति को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएं। 9 सितंबर को गांधी ने अफसोस के साथ कहा, आपने अपने पत्र में मेरे विचार का ऐसा भाष्य किया जो मैंने कभी सोचा भी न था। एक, महात्मा तेंदुलकर, वॉल्यूम 3, पृष्ठ संख्या 162।